शान शाम को वापस आया और अपने रूम में बेधड़क सा घुसा। आदत जो थी तो आज भी वो सीधा अपने कमरे में चला गया, पर जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा, उसके कदम जहाँ थे वहीं ठहर गए। नज़रें बेड पर जाकर ठहर गईं। वहाँ आरवी सो रही थी। हर बात से अनजान वो बड़े सुकून से सो रही थी। उसके चांद से चेहरे पर खिड़की के कांच से छन कर आती सूर्य की हल्की हल्की किरणें पड़ रही थीं, जिससे उसका खूबसूरत मुखड़ा तमक रहा था। चेहरे पर उसके लंबे सुनहरे बाल फैले हुए थे और उन घुंघरेले बालों के सुनहरे रेशमी बादल से बाहर उसका चांद सा चेहरा छांट रहा था। वो बेहद हसीन थी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी, पर अभी उसकी खूबसूरती का जादू ही कुछ अलग था। अलग ही कशिश थी उसके चेहरे में, जो शान को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। कुछ पल को शान भी एकटक उसके चेहरे को देखता रहा। उसके सीने से लगकर हमारी सी क्यूट सी छोटी सी अंशिका सोई हुई थी। आरवी ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लिया हुआ था। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि बस कुछ घंटे पहले ही वो एक दूसरे से मिले हैं। बिल्कुल माँ बेटी लग रहे थे वो साथ में, वही गोरा बदन, सुनहरे घुंघरेले बाल। दोनों को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उनका खून का रिश्ता नहीं है। शान कुछ पल ठहर कर उसे देखता रहा, फिर उसकी दोपहर वाली बातें याद करके उसकी भौहें तन गईं। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, फिर उससे लगकर सोई अंशिका को देखकर उसके कदम रुक गए। उसने नफरत से उन पर से नज़रें फेर लीं और बाथरूम में घुस गया। कुछ देर में फ्रेश होकर बाहर आया। अभी उसने नीचे टावल लिपटा हुआ था और कंधे पर रखे टावल से अपने गीले बालों को पोंछते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ रहा था। ना चाहते हुए भी नज़रें आरवी के मासूम के चेहरे पर पड़ ही जा रही थीं, पर उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया। बालों को ड्राई किया, फिर चेंजिंग रूम में चला गया। आरवी हर बात से बेखबर बड़े सुकून से सो रही थी। कुछ देर बाद शान कपड़े पहनकर बाहर आया। अब उसने ब्लैक टी शर्ट और वाइट कार्गो पैंट पहनी हुई थी, जो उस पर बहुत जच रहा था। उस टी शर्ट में उसकी मांसपेशियां और बॉडी उभर कर सामने आ रही थीं। चौड़े मजबूत कंधे, बाइसेप्स, वो बेहद आकर्षक लग रहा था इस वक्त। शान ने नफरत से एक नज़र आरवी को देखा और स्टडी रूम में चला गया। उसके जाते ही आरवी ने अपनी आंखें खोल दीं। उठ तो तभी गई थी जब चेंजिंग रूम के दरवाजे को खोलने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी, पर जैसे ही उसने आंखें खोली तो सामने शान को देखकर उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। आरवी अब उठकर बैठ गई और अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांसें लेते हुए बोली, बच गई आज तो तू, पहले ही इतना सुना चुके हैं। अगर फिर से उनके हाथ लग जाती फिर उनका पुराण शुरू हो जाता। चल बेटा आरू, जल्दी से यहाँ से निकल, इससे पहले ही वो ड्रैगन फिर से यहाँ आ जाए और अपनी बातों की आग से तुझे झुलसाकर राख कर दे। तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो झट से उठकर खड़ी हो गई और गेट की तरफ बढ़ गई, पर जैसे ही उसने कमरे से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया, किसी ने उसकी कलाई को कस के पकड़कर उसको अंदर की तरफ खींच लिया। आरवी की सांसें थम गईं। उसने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर लीं। ये कोई और नहीं बल्कि शान था, जो कुछ फाइल लेने बाहर आया था और तभी उसने आरवी को यहां से जाते देख लिया था। शान ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे लगभग खींचते हुए पूल साइड ले आया। आरवी अपनी हथेली उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती रही, छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप, हाथ छोड़िए मेरा। वो उससे हाथ छोड़ने को कहती रही, पर शान पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने उसको दीवार से लगाकर उसके दोनों हाथों को ऊपर करके पकड़ लिया और उसको गुस्से से घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था ना मुझसे, मेरी बेटी से और मेरी चीज़ों से दूर रहना, फिर तुम मेरे कमरे में मेरे बेड पर मेरी बेटी के साथ क्या कर रही थी। आरवी ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए दृढ़ता से जवाब दिया, कायदे से ये घर, ये कमरा उतना ही मेरा भी है जितना कि आपका, पर मैंने पहले ही कहा था मुझे ना ही आपकी ज़िंदगी में कोई जगह चाहिए, ना ही आपकी चीज़ों पर मुझे हक जमाने का कोई शौक है। बड़ी माँ ने यहाँ भेजा तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकी, और कोई जगह मुझे मालूम भी नहीं था जहाँ मैं जा सकती, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं बस अंशिका को सुला रही थी, थकान की वजह से मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला, पर आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि ना आपके कमरे में कदम रखूं, ना ही आपकी चीज़ों को हाथ लगाऊं, पर एक बात मैं आपकी नहीं मानूंगी, अंशिका से अब मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। हर रिश्ता छुटला दिया मैंने, पर अब से मैं उसकी माँ हूँ, इस बात को कोई नहीं छुटला सकता, खुद आप भी नहीं, क्योंकि अग्नि के सामने सात फेरे लेकर, मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरकर और मुझे मंगलसूत्र पहनाकर आपने ये हक मुझे खुद दिया है। उसकी बात सुनकर शान की भौहें तन गईं। उसने दांत पीसते हुए कहा, वो शादी शादी नहीं, सिर्फ एक नाटक था।
आपके लिए होगा वो नाटक, पर मेरे लिए शादी का पवित्र बंधन है। मैं आपसे पत्नी होने का कोई अधिकार नहीं मांग रही, पर आप इस रिश्ते का यूं अपमान तो मत कीजिए। चाहे आपने ये शादी मजबूरी में की हो, पर मैंने तो आपको पूरे दिल से अपना पति माना है। अगर आपको अब भी लगता है कि शादी में जो हुआ उसमें मेरी गलती थी, तो विश्वास कीजिए मेरा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मेरा किसी लड़के के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैंने पूरी तरह से खुद को इस रिश्ते में समर्पित कर दिया है, विश्वास कीजिए मेरा। ये सब बोलते हुए आरवी की आंखें झिलमिला गईं, उसका गला भर आया तो वो खामोश हो गई। वहीं उसकी बात सुनकर शान के लबों पर तीखी मुस्कान फैल गई। उसने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, विश्वास? वो भी तुम पर? मुझे अब दुनिया की किसी लड़की पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, और ना ही कभी हो सकता है। तुम लड़कियों का कोई ईमान होता ही कहाँ है? प्यार के दावे किसी के साथ करती हो, और अगर कोई उससे ज्यादा हैंडसम लड़का मिल जाए तो उसे देखकर तुम्हारी नीयत बिगड़ जाती है। अगर उससे ज्यादा पैसों वाला कोई मुर्गा हाथ लग जाए तो उसके साथ हम बिस्तर होने से भी तुम्हें कोई परहेज नहीं रहता। सारे कस्मे वादे सब महज मजाक बनकर रह जाते हैं। सूरत और पैसों के आगे तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता। वफा शब्द से तुम्हारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। बस दगा देना जानती हो तुम लड़कियां। किसी को पहले अपने प्यार में पागल करके कैसे बाद में उसे मौत के घाट उतारा जाता है, ये तुम लड़कियों से बेहतर कौन जान सकता है। तुम्हारी तो रगों में खून की जगह धोखा और फरेब बहता है। किसी को कैसे अपना दीवाना बनाना है और काम निकल जाने पर कैसे उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना है, ये तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से आता है। जो अपने फायदे के लिए अपने बच्चे का फायदा उठाने और उसे मारने तक से पीछे नहीं रहती, उनका भला क्या ईमान? और क्यों करूं मैं उस इंसान पर भरोसा जिसकी फितरत ही दूसरों को धोखा देने की हो। आप गलत कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे नहीं पता कि आपके दिल में लड़कियों को लेकर इतनी नफरत क्यों है, क्यों आप उन्हें भरोसे के लायक नहीं समझते। पर मैं एक बात जानती हूँ, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर किसी एक ने आपको धोखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हर रिश्ते से आपको धोखा ही मिले। अगर एक लड़की आपका विश्वास तोड़कर चली गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी लड़की जात को ही विश्वासघाती करार दें, उनके चरित्र पर उंगली उठाएं। आरवी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि शान ने गुस्से में उसको गेट की तरफ धकेल दिया। मुझे तुम्हारे लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप मेरे कमरे से दफा हो जाओ और दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शान के ऐसे बर्ताव से आरवी की आंखें नम हो गईं, पर वो चुपचाप वहां से चली गई।